ये तो सच है ना कि हम सब गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स भी करते हैं और सिंस भी करते हैं। देखिए गुनाह के लिए कई लफ्ज है ना अरबी में, खता मिस्टेक, हो गई इरादा नहीं था हो गई, फिर गुनाह जम, फिर इसी तरह से और बहुत सारे मुख्तलिफ लेवल है। सबसे हल्का दर्जा खता है, मिस्टेक, लेना नहीं था, टेक नहीं था, मिस हो गया, ये कह लीजिए। जब हम गुनाह करते हैं, और गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह आपको पता क्या, कोई आप में से बताए, मुझे पता है आप में से 90% लोग शिर्क कहेंगे, ये वो नहीं है। देखिए शिर्क होता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट, यानी उससे भी क्लोज सर्किट की बात है। सबसे बड़ा गुनाह जो है ना वो मकसद हयात को भूलना है, शिर्क उसका एक पार्ट है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने हमको पैदा किया, वो खालिक है, वो मालिक है, वो रज़ाक है, वो दाता है, वो देने वाला, वो लेने वाला, वो इज्जत देता, वो जिल्लत से बचाता। अल्लाह से जब ये गहरा ताल्लुक होता है, मकसद हयात से सामने रहता है। वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदुन, ये है मकसद हयात। देखिए आप अल्लाह को एक मान भी लेते हैं ना, जैसे आज हम मुसलमान मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तौहीद के तो हम कायल हैं, अल्लाह अकबर के हम कायल हैं, लेकिन इन्नी असगर के कायल नहीं है। और इबादत क्या होती है? खुद को सबसे छोटा समझना। हम अल्लाह को सबसे बड़ा समझते हैं लेकिन खुद को सबसे छोटा नहीं समझते। हम कहते हैं तू भी बड़ा, थोड़ी सी बड़ी मैं भी, चलो बराबर नहीं, तू 90%, तू समझे 80%, तो 20 तो मेरा भी है। कोई कहता है अल्लाह तू 90% 10% में है, और मैं फिर दुनिया और रिश्तेदार और साथी और बोला। तो मकसद हयात को भूलना, खुद को भूलना। अल्लाह ने मुझे और आपको इस दुनिया में इसलिए भेजा था कि हम खुद रब को माने, उसको एक माने, उसको खालिक मालिक सब कुछ समझकर पूरी दुनिया के लोगों को उसे एक रब से जोड़ दे। लेकिन आज लोग इसी में रहते हैं, अल्लाह ने जिन चीजों से रोका हुआ उसमें कूद पड़ते हैं। तो हमारे गुनाहों की मुख्तलिफ किस्में हैं, आप एक लम्हे के लिए सोचिए। अल्लाह सुबहान तआला ने ये सब शरीयत दी होती, हलाल हराम बताया, कुरान बताया, हदीस में सब बताया, लेकिन एक दरवाजा अल्लाह ताला बंद कर देता, और वो है तौबा का। जो गुनाह कर लिया वो खत्म नहीं होगा। तो आप बताइए कि हम हलाक ना हो जाते? ये अल्लाह का फजल है कि उसने तौबा का दरवाजा मौत से कुछ लम्हे पहले तक खोल दिया। ऐसे ही है ना कि तुम मरने से पहले भी तौबा करोगे तो मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि मालम युगारगिर, गरगरा मौत का नहीं लगता, उससे पहले तौबा कबूल है। और अगर तौबा होती ना, कई मजाहिब हैं ऐसे आपको पता, वो कहते हैं एक दफा ये गुनाह हो गया खत्म। ये जितने बातिल फिरके गुजरे हैं, मोतजिला और ख्वारिज थे और अशारिया थे, आप इनके अकायद पढ़ के देखिए, ये किसी ना किसी एक्सट्रीम पे चले गए अल्लाह की किसी सिफत में। इनमें से एक का ये भी अकीदा था, एक दफा आपने जो गुनाह कर लिया खत्म, बस आप निकल गए अल्लाह की नजरों से, लिस्टों से आपका नाम चला गया, कोई दोबारा री एडमिशन नहीं है इस्लाम में। ये आज की जुबान में ऐसी है कि जैसे कोई कहे कि ला इलाज बीमारी, डॉक्टर कहते हैं इसको ले जाएं, यहां भी इसने मरना है, घर में मर जाए तो बेहतर है। अल्लाह ने हमारे लिए तौबा का दरवाजा खोला, लेकिन तौबा के मामले में हमारे अंदर काफी गलत फहमी है। अगर उनको थोड़ा सा देखें तो बात समझ आएगी। पहली बात जो हमारे जहनों में तौबा के साथ है, वो साथ ही गुनाहगार लफ्ज आता है। मानते हैं? कोई कहता है ना तौबा करें, तो कहते मैंने क्या गुनाह किया, और कोई कहता है तुम्हें तौबा की जरूरत है, तो वो कहता है अच्छा जी क्या मतलब मुझे गुनाहगार समझते हैं। ये एक बिग मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तौबा गुनाहगारों का फेल है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत नूर में क्या कहते हैं, वतूबु इलल्लाही, और अल्लाह की तरफ तौबा करो, अय्युहल मोमिनून, ए ईमान वालों तुम अल्लाह की तरफ आओ। फिर इसी तरह सूरत तहरीम में क्या आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबु इलल्लाही तौबतन नसूहा, कि तुम अल्लाह की तरफ पक्की सच्ची तौबा करके आ जाओ। तो पता चला कि तौबा तो गुनाह का नहीं है, गुनाहगार का अमल नहीं। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो दिन में 70 से भी ज्यादा बार तौबा करता हूँ, और इसी तरह 100 के अल्फाज भी आते हैं। फिर वो हदीस भी आपने बहुत दफा सुनी होगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुल्लु आदम खताउन, आदम का हर बंदा, आदम का यानी हर बच्चा जो कह लीजिए वो कौन है, गुनाहगार है। लेकिन खैरुल खत्ताउन कौन है, अत्तवाबुन, सबसे बेहतरीन खताकार वो हैं जो के तौबा करते हैं। तो पहली बात तो ये जहन से आज निकाल दीजिएगा कि तौबा सिर्फ गुनाहगारों का काम नहीं, बल्कि ये तो अंबिया ने भी की। قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. तो जहां हम थोड़ा सा देखेंगे, तौबा के एतबार से तीन किस्म के लोग होते हैं। आप लोग लिख लीजिए। तो ये चीजें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि अमूमन हम तौबा को बस गुनाह के साथ जोड़ते हैं और फिर उसी को इसलिए हम अपने ऊपर रखते नहीं। और बास लोगों का तो हाल ये है कि वो दूसरों के सामने तो तौबा भी नहीं करते। हमारी नजर में एक तौबा क्या है, चलो बच्चे से को कान पकड़ो, तौबा तौबा करो, तौबा करो, और जस ये नहीं फिर ना करना, चलो एक टांग पे खड़े हो जाओ, हम तौबा इसको कहते हैं। हालांकि तौबा की असल बहुत गहरी है। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, कुरान पाक में तौबा का जो लफ्ज़ है डिफरेंट एंगल से 87 टाइम यूज हुआ है। 69 वर्सेस में 87 टाइम का मतलब क्या हुआ कि कुछ वर्सेस में एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल हुआ। और सबसे पहली आयत तरतीब के अतबार से अगर आज भी आप कुरान में चेक करें तो वो सूरत बकरा की आयत नंबर 37 है। और वो किसकी तौबा का जिक्र है, किसी गुनाहगार की नहीं। फतलक्का आदम मिन रब्बिही, पर सीख लिया आदम ने अपने रब से कुछ कलिमातिन कलमे, फतब अली, फिर अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है, पलट आता है, क्योंकि इन्नहु तवाब रहीम, वो बख्शने वाला और मेहरबान है। तो पता क्या चला कि सबसे पहली आयत एक नबी की तौबा से और अल्लाह के नाम तवाब से मुतल्लिक है। तो याद रखिए कि बंदा तौबा करता है तो बंदा गुनाहों से तौबा करता है, और अल्लाह तौबा करता है तो अल्लाह बंदे की उस सजा से तौबा करता है। हमारे यहाँ दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तौबा इस्तग़फार, और अमूमन इसका फर्क हम नहीं जान पाते। तो बाज दफा तो ये दोनों एक दूसरे के मानी में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर इनको इकट्ठा पढ़ेंगे तो तौबा का लफ्ज़ क्या है, तौब और औब, इसकी बात में अगर मौका हुआ तो डिटेल्स मजीद दूंगी, लेकिन सिर्फ एक सीक्वेंस से चलते जाइए। तौबा का मानी कहता है पलटना, औब हौज में पानी के वापस आने को कहते हैं। जब बंदा तौबा करता है ना तो वो अल्लाह की तरफ पलटता है, क्यों, क्योंकि उस गुनाह की सूरत में वो अल्लाह से दूर हो चुका था, समझ गए, अल्लाह की रजा से दूरी थी, तौबा करके पलटा है, ठीक है। और इस इस्तिग़फार के गफर यग़फिरु से गुफरानुन छुपाना, पिछले गुनाहों को माफ करना। जब हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें ना कि तौबा इस्तग़फार इन्नी तुबतु इलैक वस्तग़फिरुल्लाह, तो इसका उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगा कि अल्लाह आइंदा नहीं करूंगी, पिछले को माफ कर। हम तस्वीर में कहते हैं ना अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तौबा इस्तग़फार इस्तग़फार, तो उर्दू में तस्वीर पढ़ें, अल्लाह मेरे पिछले माफ कर दे अब आइंदा नहीं करूंगी, अल्लाह पिछले माफ कर दे आइंदा नहीं करूंगी, अल्लाह पिछले माफ कर दे आइंदा नहीं करूंगी। अब आप जरा इस बात को सोचें और उन लोगों का तसव्वुर में लाइए ख्याल कि जो गुनाह की महफिल में बैठे कह रहे होते हैं तौबा इस्तग़फार इस्तग़फार तौबा तौबा तौबा, बैठे भी हैं कर भी रहे हैं स्टिल कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं तौबा इस्तग़फार, यानी कर भी रहे और कह रहे हैं अब नहीं करेंगे पहला माफ कर दे। और अक्सर मैं इसके लिए एक मिसाल देती हूँ कि आपकी मेड है वो किचन में काम कर रही है, आप उसको कॉन्शियस करते हैं कि देखो ये बहुत कीमती बर्तन है इनको एहतियात से धोना। अब आप क्या सोचते हैं कि वो जहर है कि इसको केयरफुली यूज करेगी, जू ही वो ये काम करेगी आपके जहन में क्या आएगा कि बहुत केयरफुली करी। आपने देखा कि वो औरत बहुत केयरफुल थी, इतने में उसके हाथ से प्लेट गिरी और टूट गई, तकलीफ तो आपको होगी, गुस्सा भी शायद थोड़ा है, लेकिन आप फौरन फील करेंगे किसने जान के नहीं तोड़ा, और वो आपको देख देख के भाजी माफ कर दे मैंने कोशिश की थी ये थी वो थी, आपको तेट सो के आप ज्यादा ना घबराओ मुझसे भी टूट सकती थी। और एक सूरत क्या है कि बाजी ये कीमती है आप कह रहे हैं ये बड़ी कीमती है इसको ना तोड़ना, और वो ये प्लेट पकड़, अच्छा भाजी ये वाली प्लेट थी, और आपके सामने कट से फ्लोर पे फेंक गए, और जू ही गिर के वो किरची किरची हो तो कह दे ओ बाजी माफ कर दो आइंदा नहीं तोड़ूंगी, बाजी माफ कर दो आइंदा नहीं तोड़ूंगी, फिर उसी की तरह की एक और प्लेट पकड़े और तोड़ दे, आप उसके साथ क्या करेंगे, आप कहेंगे प्लेटें छोड़ो तुम निकल जाओ इधर से वरना मैं कुछ कर दूंगी। ये है तौबा। जब एक बंदे से राह चलते पांव फिसल ही जाता है तो अल्लाह माफ कर देता है, उसको पता है बंदा गुनाह करेगा, लेकिन जब बंदा गुनाह करे और उस पे शर्मिंदा भी ना हो पलटे भी ना, ये मसला है। तो तौबा के लिहाज से इंसानों की तीन किस्में ये लिख लीजिए। पहली किस्म क्या है कि कुछ लोग अजाब इलाही के डर से तौबा करते हैं, ठीक है, यानी बस उनको पता है कि ये गुनाह हो गया और अगर अल्लाह ने माफ ना किया तो अजाब होगा, ठीक है, कोई गुनाह हुआ कोई नाफरमानी हुई अल्लाह तो अजाब देने वाला अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, ये सबसे कम दर्जे की तौबा होती है। तो ये मोमिनों की सिफत है, मोमिन को इस बात का डर होता है कि अल्लाह पकड़ने वाला है। गाफिर ज़म्ब काबिल तौब शदीद अलिक़ाब, सूरत ग़ालिबिन मोमिन की पहली आयत है। मोमिन को पता है कि अल्लाह नाराज होता है तो वो अल्लाह की पकड़ से बचते हुए तौबा करता है, वेरी गुड, ये अच्छी तौबा है। इसी का जिक्र जो है वो सूरत नूर में आता है, वतूबु इलल्लाही, अल्लाह की तरफ तौबा करो मोमिनो। इससे सेकंड दर्जे की तौबा क्या होती है कि कुछ लोग सवाब और लालच की हिरस में तौबा करते हैं। कैसे? उनको ये पता है कि जब एक इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देते हैं, फिर उसके उन गुनाहों से उसको निकाल कर उसके दर्जे भी बुलंद करते हैं। कुरान पाक में ये सूरत निसा में गालिबन आयत आती है कि जो लोग गुनाह से माफी मांगेंगे हम उनके दर्जे भी बुलंद कर देंगे। तो ये कौन लोग हैं? सालेहीन, नेक लोग। गुनाह हो ना हो वो ये इंतजार नहीं करते कि गुनाह हो तो तौबा करें, बल्कि वो क्या इरादा करते हैं कि हम तौबा इसलिए करें कि इस तौबा से खुश होकर अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये नेक लोगों की बात है और इनका जिक्र सूरत कौफ की आयत 35 में आता है। अल्लाह ताला कुछ लोगों का जिक्र करते हैं कि वह जा बिकल्ब मुनीब, और इसी तौबा को इनाबत कहते हैं। मुनीब लफ्ज बड़ा प्यारा है, बच्चों के नाम भी होते हैं उनीब मुनीब, तो वही लफ्ज है, नौब से है, यानी ये इनाबत है। अभी गुनाह नहीं भी हुए फिर भी तौबा पढ़ करते रहे। तीसरा दर्जा जो इससे भी बुलंद है वो क्या है? महज अल्लाह की इताअत में तौबा करने वाले। गुनाह हो ना हो नो प्रॉब्लम, इससे कुछ फायदा हो कि ना हो, वो सिर्फ इसलिए तौबा करते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि तूबु इलल्लाह, और ये अंबिया कराम होते हैं। इसी को औबा कहते हैं। अवाबीन का लफ्ज आपने सुना होगा, हजरत इब्राहिम के लिए कुरान पाक में आता है, अवाहुम मुनीब, ठीक है। तो ये अंबिया कराम की तौबा, इसी पे आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 बार भी तौबा करते थे। इसीलिए कुछ उलमाए कराम है वो कहते हैं कि बंदे को हर नमाज के बाद कम अज कम 20 बार तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि 20 ज़रब 5 100, 3 दफा तो वैसे ही करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते थे तो क्या करते थे? अल्लाहु अकबर, एक तो पहुंची बात से, फिर अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। भाई आप किस चीज़ की इस्तग़फार कर रहे हैं? नमाज पढ़िए, कोई फिल्म थोड़ी देखिए। नमाज जैसा खूबसूरत अमल करने के फौरन बाद अस्तग़फार कहना क्या है कि अल्लाह जैसी नमाज पढ़ने का हक था वैसी नमाज नहीं पढ़ी, तो लिहाजा तू मुझे माफ कर दे। तो लिहाजा गुनाह का इंतजार ना करें, और ये ना सोचें कि जो तौबा करते हैं वो बड़े ही गुनाहगार हैं। बाज़ लोग कहते हैं पता नहीं इसने क्या गुनाह किया, हर वक्त ये इस्तग़फार पढ़ती रहती है। इससे इंसान अपने आप को बचे। और इस आखिरी जो जिक्र है इसका जिक्र सूरह स्वाद में आता है। तो हम सब अपने ऊपर देखें, फिर याद रखिए कि तौबा, अभी आपने देखा है कि कुछ ना भी गुनाह करो तो तौबा करें, सवाब भी होगा फायदा भी होगा और अल्लाह की रजा होगी। लेकिन दो सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें तौबा वाजिब है, फर्ज है, नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। नंबर एक सूरत क्या है? जब कोई ऐसा काम हम नहीं करते जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह ने हमें सिला रहमी का हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने गरीबों का ख्याल रखने का हुक्म दिया, नजरों की हिफाजत का हुक्म दिया, अब हम नहीं कर सके तो फौरन इस्तग़फार कीजिए कि अल्लाह मुझे पकड़ ना लेना इस काम पे, मैं अब तौबा करती हूँ। और दूसरी सूरत के कि जब कोई ऐसा काम कर लें कि जिससे अल्लाह ने रोका था, शराब पीनी, जिना, बदकारी, बेहयाई, यानी डूज पे अमल ना कर सके तो तौबा फर्ज है, फिर तौबा नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला हर गुनाह की माफी कर देता है, लेकिन कौन से गुनाह को अल्लाह ताला माफ नहीं करता बगैर तौबा के? शिर्क को माफ नहीं करता। तो लिहाजा हम अपने मौजू के ऊपर वापस आ जाएं कि इस वक्त अगर हम इस कुरान से दूरी के जुर्म में मुबतला है, और मैं इस वक्त इनफरादी तौबा की बात भी नहीं कर रही, इज्तमाई तौबा की बात कर रही हूँ, तो इस वक्त हमारे ऊपर तौबा फर्ज है, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम नेशन और बीइंग अ पाकिस्तानी या इंडियन, जो भी आप कल्चरल या अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम बहुत सारे वो काम नहीं कर रहे जो हमें करने थे, और बहुत सारे वो कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए थे। इसकी सजा में आज दुनिया में हम पर तकलीफ हो रही है। याद रखिए तौबा ही वो वाहिद रास्ता है कि जिसकी वजह से रब की रूठी हुई रहमतों को आज हम वापस उम्मते मुस्लिमा पे बुला सकते हैं। सिर्फ दुआओं से भी बात नहीं बनेगी, जितनी इमाम काबा दुआएं मांग चुके हैं पिछले 10-15 सालों में लगी होती तो आज हम पूरी दुनिया की वर्ल्ड पावर हो चुके होते, सुपर पावर आज हम होते हैं, अगर सिर्फ दुआओं से अल्लाह हालात बदल देता। अगर तरावियों की दुआएं, तहज्जुद की दुआएं और वितरों में पड़ी हुई दुआओं से अगर अल्लाह हालात बदलता तो अब तक बदल चुके होते। अगर कुरान छाप छाप कर बांटने से हालात बदलते तो आज बदल चुके होते, लेकिन नहीं बदले। सीडीज फ्री बांटने से अगर हालात बदलते तो अब मुसलमानों के हालात बदल चुके होते, लेकिन ये कब बदलेंगे? जब इत्तहजू हाजल कुरानी महजूरा से हाथ उठाएंगे, जब किसी कौम के हाथों में कुरान आ जाता है, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। आप सीरत से इसको देख लीजिए कि उहद बदर के अंदर क्या मुसलमानों की तैयारियां थी। दो घोड़े, चंद टूटी हुई तलवारें, लकड़ी की तलवार आपने उकाशा को पकड़ा दी कि मेरे पास कुछ है नहीं। ये अल्लाह का करना था कि वो तलवार उनके हाथ में आती, चमकती हुई लोहे की तलवार बन गई। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर तक उस तलवार को अपने साथ रखा। उन्होंने कहते थे ये मुझे नबी ने दी थी और मैं इसे कई काफिरों के सर कलम करूंगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि अल्लाह को ये बात मालूम थी कि ये गिरोह जो है ये अल्लाह के रास्ते में निकला। तो बहुत थोड़े असबाब भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब ताल्लुक बिल्ला मजबूत होता है। आज ये बात अगर हम मुसलमान समझ जाएं और अपनी नस्लों को दें तो हम देखेंगे कि हमारे हालात जरूर बदलेंगे। आप और मैं इंशाल्लाह पहले की तरह कुरान पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, दौरे कुरान भी करेंगे, एंड भी आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। ये साथी अगर आप में से किसी को सूट करे तो आप लोग जरूर सुनिए। करें क्या, मुसलमानों का माजी इतना रोशन, हाल इतना मशकूक और मुस्तकबिल इतना खौफनाक क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस वक्त हमें इज्तमाई तौर पर इस कुरान को पकड़ने की जरूरत है। जब इस कुरान को पकड़ेंगे, अपने गुनाहों के कफारे देंगे, देखिएगा मट्टी में से सोना निकलेगा। ये सऊदी अरब में जो गैस निकली या तेल निकला, ये कब निकला आपको हिस्ट्री पता ही होगी। पहले सऊदी अरब क्या था, किसी को पता भी नहीं था ये क्या मुल्क है, कभी तवज्जो ही नहीं की किसी ने इस तरफ। लेकिन जब से इसमें से तेल निकला तब से दुनिया की नजरें इस पर लग गई। वजह, जब सऊदी अरब में इस्लामी शरीयत नाफिज हुई थी, इस्लामी शरीयत नाफिज हुई थी।